इल्म व अमल का कारवायसो है पाक वतन के पास बायसो।
सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया और अदील भाई का शुक्रिया, मंत्री सेक्रेटरी जिन्होंने ये सेशन अरेंज किया, और मेरी खुशकिस्मती कि इतने प्रोफेशनल दोस्तों के सामने खड़े होकर एक तालिबे इल्म की हैसियत से लेक्चर देना ख्वाब सा महसूस हो रहा है। लेकिन अपनी तरफ से जो भी एक्सपीरियंस है CSS के रिलेटेड, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में दिए जा रहे हैं, जो कुछ भी मेरे पास तजर्बा है आप दोस्तों तक ट्रांसमिट करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश यही होगी कि आप दोस्तों की जो भी क्यूरीज हों, क्वेश्चंस हों, या जो मुहम सवाल आपके जहन में इसके बारे में आपकी वो चीज़ें दूर की जाएँ। तो हमारा ये लेक्चर की निस्बत अगर मैं ये कहूँ कि डिस्कशन टाइप सेशन होगा तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग भी तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मैं भी खुद एक तालिबे इल्म हूँ अभी। तो इसमें दो सेगमेंट होंगे हमारे। फर्स्ट सेगमेंट ये होगा कि प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने पावर पॉइंट पे, इसमें कुछ मैं इलस्ट्रेशन आपको दूंगा, आपकी ये चीज़ है क्या, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, और CSS क्या है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, किस तरह कंडक्ट होते हैं, जॉब्स क्या क्या हैं, जॉब्स की नेचर क्या क्या होती है, उनमें पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है, और मौजूदा पाकिस्तान में बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी और खसूसन बिलखसूस बीइंग अ शिया, और सबसे अहम बात कि ISO के रुकन की हैसियत से हम एक अच्छे अफसर बनकर पाकिस्तान की और मिल्लत कशियों की किस तरह खिदमत कर सकते हैं। जैसा कि तमाम दोस्तों के इल्म में है कि ISO पाकिस्तान का जो नस्बुल ऐन है उसका जो दूसरा जुज है कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई व नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना है। पहला सेगमेंट तो हमारी जाती तरबियत के हवाले से है, दूसरा सेगमेंट जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई व नजरियाती सरहदों की हिफाजत के हवाले से है। बीइंग अ शिया स्टूडेंट हम एक अच्छा अफसर बन के उसमें अपना रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं, और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत से हमें किस तरह सबक मिलता है कि हम इस सेक्टर में जहाँ भी इंजीनियरिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, मेडिकल में रोल प्ले कर रहे हैं, बगैर किसी पील हुजत के आज हमें पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे और काबिल तरीन डॉक्टर मिल्लत तशय्यों के पास हैं, सबसे अच्छे और काबिल तरीन इंजीनियर्स यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडल ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं हर फील्ड में, जो नित नए चैलेंजेस कबूल कर रहे हैं, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, वो मिल्लत तशय्यों के पास हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसे फील्ड की तरफ रुख करें जिसमें हमारी ज़ात से ज़्यादा हमारी कौम और मिल्लत को ज़रूरत है। तो इसका आगाज पहले भी इसी फोरम से इंफरादी तौर पर तो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शिया नौजवान कत नज़र इससे और इससे वाला तर होकर कि उनका किसी तंजीम से ताल्लुक़ है या नहीं है, वो कोशिश करते रहे इंफरादी तौर पर, और माजी में भी डॉक्टर शहीद नकवी और डॉक्टर शहीद कैसर व सयाल ने इस तरह कोशिश शुरू की थी, बेदारी मुहिम चलाई थी, फोरम दिया था जहाँ से लोगों की तैयारी करवाई जाती थी, और बहुत इफेक्टिव था सारा कुछ। लेकिन चूँकि किस्मत के हालात को ये पसंद ना रहा, हमारा कीमती असासा हमसे छिन गया, तो अब भी कुछ सीनियर दोस्त इसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह एक इफेक्टिव वे में लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनकी तैयारी में जो कुछ उनकी मदद की जा सकती है की जाए, और उसके साथ साथ इस अहम शरई व इनफरादी फरीजा में, क्योंकि ये जो जॉब की नौयत है, ये जो एग्ज़ाम है इसकी नौयत है, इसका इनफरादियत बल्कि इज्तमाहीत से ज़्यादा फ़ायदा इनफरादियत को, अगर बीइंग अ ह्यूमन एक इंडिविजुअल या एक अच्छे कैंडिडेट की अगर हम उसको एनालाइज करें तो एक शख्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खास उसकी जॉब्स हो, उसके इंसेंटिव्स हो, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो, जॉब की नेचर हो, उसका सोसाइटी में रोल हो, सोशल डिवेलपमेंट में उसका क्या किरदार है, और इससे बढ़कर मिल्लत की जो मिल्लत कशियों से भी बढ़कर पूरी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी उम्मत के जो अहम तरीन फैसले होते हैं उसमें इस सेगमेंट का क्या रोल है? शायद हमें खुद भी यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं पता था और आधे से ज़्यादा दोस्तों को अभी भी नहीं पता था होगा कि CSSB क्या है, ये कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। और बहुत से मुझे तरीके ये क्या सराई या एग्जैजरेशन नहीं होगी कि मैं दोस्तों के बारे में कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो इससे भी ज़्यादा कहीं पोटेंशियल रखते हैं, अगर वो एग्ज़ाम में अपेयर हों तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएँ, सेकंड में निकल जाएँ, फिर अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, इसकी फर्दर डिस्कशन होगी सारे। या और जो दूसरे जैसे सफारतकारी है, हमारे जो सफी रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में जाके बैठते हैं, पाकिस्तान के नज़रियात को, पाकिस्तान की कौम को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और वही तशख्स दुनिया के सामने जाता है जो वो एक फ़र्द या चंद अफराद या गिरोह कर रहा होता है। तो अगर इनमें से लोगों को सही वे में बताया जाए कि ये क्या है, हम किस तरह वहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितने ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में से ऐसे लोगों की उनमें इतने ज़्यादा काबिलियत और पोटेंशियल है कि अगर उनको राइट डायरेक्शन मिले तो वो 2 से 3 साल के अरसे में एक अच्छी पोस्ट पे जाकर मिल्लत को सर्व कर सकते हैं। एक तमाम दोस्त ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की होगी जो मैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन दूंगा। पहले फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट तक तमाम दोस्त किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं प्रेजेंट करूँ उसके बारे में, किसी एक लाइन के बारे में, किसी लफ्ज के बारे में, किसी स्पेसिफिक टर्म के बारे में, जो भी क्वेश्चन किसी दोस्त के जरिए वो बरए मेहरबानी से नोट कर लें। ये प्रेजेंटेशन होने के बाद फर्दर तमाम दोस्तों को माइक दिया जाएगा, जो कोई भी क्वेश्चन शुरू को शुभात उसके बारे में जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी उस वक्त हम सेशन खत्म नहीं करेंगे। हमारा ये सेशन करना जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है, आप लोग आए सेशन सुना चले गए, मकसद ये है कि ये जो आप लोग इतने इकट्ठे हुए दोस्तों ने जहमत की, माले हम खर्च हुआ, आप दूर दराज से आए, यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके आए, घर से दूर आए, सारी जहमत, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन यहाँ प्रेजेंट करना। मैं चाहता हूँ कि इसमें से कम अज़ कम अगर 10 बंदे भी आए तैयार हो जाते हैं तो इसे अच्छे अंदाज में करेंगे और एक ईमानदार और काबिल अफसर बनकर गाँव की खिदमत करेंगे तो ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है हम कोई 2 घंटे का और बड़ा लेक्चर रखें। मकसद यहाँ आपको इकट्ठा करके सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, मकसद ये है कि आप कॉम्प्रीहेंड करें हम क्या बताना चाह रहे हैं, चीज़ें आपको समझ आए, आपको पता हो कि आपको अगर किसी को पोर्ट्रे करना चाहे, किसी को बताना चाहे, यूनिवर्सिटी में फर्द के तमाम दोस्त यूनिवर्सिटी से हैं, हर यूनिट के 2 दोस्त आए होंगे, 3 आएंगे मैक्सिमम, तो पूरी यूनिवर्सिटी को जाकर ये प्रेजेंट करें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे तमाम दोस्त जो फ्लैश है यूएसबी साथ लाए, लैपटॉप ले आए, ये प्रेजेंटेशन साथ ले जाएँ अपनी यूनिवर्सिटी में, जिस तरह शबे जुमा को नमाज के बाद दुआ होती है वहाँ पे तमाम दोस्तों को इंसाइट करें कि ये भी ज़रूरत है और बहुत अच्छा ये ऑफ सर्विसेज है, इंजीनियरिंग नो डाउट अच्छा प्रोफेशन है, मैं इंजीनियर हूँ ये उसकी शिकायत तो नहीं कर सकता, वैसे मेडिकल बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन उनसे नहीं बढ़ के इसकी ज़्यादा अहमियत है इस वक्त। हमारे पास लायर बहुत ज़्यादा है, हमारे तशरीह के काबिल लायर भी हैं, जुडिशरी में भी हमारे लोग बैठे हैं, मेडिकल में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, पुलिस में भी छोटे रैंक्स में हैं, लेकिन इस अब मेरी जो पर्सनल परसेप्शन है अगर इन हालात में जिन हालात में मिलत तशरीह पाकिस्तान में रह रही है और जिन मुश्किल का हम इस वक्त सामना कर रहे हैं उनमें अगर वाजिब नहीं तो सुन्नत तक इसकी ज़रूर ज़रूरत है कि हम इस पर अमल करें और एक अच्छा और ईमानदार अफसर बन के मिलत तशरीह के मसाइल का अदा करें। तो तमाम दोस्तों दोबारा गुजारिश है कि जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो इसके बारे में क्वेश्चन नोट करें, आप जब तक सेटिस्फाई होकर नहीं उठेंगे कोई क्यूरी आपके जहन में हो पहले से जो प्रेजेंटेशन शुरू करूं तो आप पहले अपने तैयार करें, तकरीबन 12 या 14 स्लाइड्स होंगी, हर स्लाइड से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट रुकूंगा, मैं उसे उसको पढ़ के बताऊँगा आपको रीडिंग में कि क्या क्या इनका इंट्रोडक्शन है, क्या कुछ होता है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट ये सेगमेंट है, बाकी आधा घंटा आप दोस्तों सवाल होंगे और उसके फिर जवाब देंगे। व्हाट इज CSS? CSS एब्रिविएशन है, इट स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये प्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं, चाहे तो इधर जो दोस्त कोई भी यूनिट एक बंदा अगर ना भी है तो आपने जो ईमेल एड्रेस की है, मैं अनिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग चले जाए तो आप लोग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जितने यूनिट स्कूल है उनको ये मैसेज ईमेल पे फॉरवर्ड कर दें, आप लोग वहां पे जाकर रह सकते हैं। सेंट्रल सर्वेल सिविलियन सर्विस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 17 ऑफ सिविल सर्विस। और हर साल मोस्टली फरवरी के जो लास्ट वीक होता है सैटरडे से स्टार्ट होता है और साल में एक दफा ये एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम के दो पार्ट हैं, एक रिटन पार्ट में, दूसरा इंटरव्यू पोर्शन है। रिटन पार्ट में आपको तहरीरी इम्तिहान जिसे हम बोलते हैं 1200 नंबर का तहरीरी इम्तिहान होता है, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, मजामी होते हैं, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं 600 हो गया, 400 हो गया, इसमें एफएससी का 1100 का एग्जाम होगा, मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं, उसकी डिटेल आगे आती है। जो दोस्त वो तहरीरी इम्तिहान पूरे पाकिस्तान से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एग्ज़ाम के मरने के बाद जो भी उनके चेकिंग का पैटर्न है उसके बाद जो लोग तहरीरी इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। और फिर 300 नंबर इंटरव्यू का इंटरव्यू है, उसमें इंटरव्यू में तकरीबन सीनियर आपके आईजी लेवल के लोग, उससे भी सीनियर लोग बैठते हैं पैनल को और आपको जज करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं, करंट सिनेरियो डिस्कस किए जाते हैं और भी रिलेटेड जो उसके कोर्स के रिलेटेड थिंग्स हैं। तो मेन थिंग इसमें यह है कि जो इम्तिहान है दो हिस्से में मुश्तमिल है, एक तहरीरी इम्तिहान है और दूसरा जबानी इम्तिहान है। तहरीरी इम्तिहान जिसे रिटन टेस्ट का बोलते हैं 1200 नंबर के और उसका जो वाइवा वो या इंटरव्यू वो 300 मार्क्स का है। अब ये तहरीरी इम्तिहान के स्टेप वन की तरफ, इसे रिटन पार्ट जो है उसमें 1200 नंबर मैंने आपको बताया, 1200 नंबर में आगे फिर डिवीजन है, कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर स्टूडेंट को जो सीएसएस का एग्जाम देगा या पीएमएस का एग्जाम देगा, पीएमएस का भी सेम यही पैटर्न होता है, वो भी 1200 नंबर का उसका रिटर्न होता है और 300 नंबर का वाइव होता है। तो 1200 नंबर में 600 नंबर के कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, लाजमी मजामी जिन्हें हम बोलते हैं। आखिर तक आवाज आ रही है, 600 नंबर के कंपलसरी लाजमी मजामी होते हैं, जो लोग भी इस इम्तिहान में अपेयर होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे उनको हर हाल में पेपर देने होंगे। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है कमीशन, मतलब ए टू एच 7 ग्रुप से 8 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, वो आपकी मर्जी के होते हैं, ए ग्रुप सेलेक्ट करें, बी करें, सी करें, डी करें, मेन कि आपको 1200 के तहरीरी इम्तिहान के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और फिर उनकी उसके बाद तैयारी स्टार्ट होती है कि किस सब्जेक्ट को किस तरह आप पढ़ेंगे तो अच्छे से बोल लेंगे और क्या क्या तरीकाकार है, कौन कौन टीचर पढ़ाने वाला है, कितना टाइम लगता है और इसमें कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर है, जिस तरह आप सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ते हैं, मतलब अगर कोई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा है तो जब वो मशीन इलेक्ट्रिक मशीन एक सब्जेक्ट है वो बुक पढ़ेगा तो एक बुक से भी कर सकते हैं, चार बुक से भी कर सकते हैं। अगर कोई अकाउंट्स का बंदा बैठा है तो जनरल अकाउंटिंग की सब्जेक्ट एक किताब से भी कर सकता है, पांच किताबों से भी कर सकता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स का कोई एक्सरसाइज या कोई टॉपिक आप एक सब बुक से भी कर सकते हैं, चार बुक से भी कर सकते हैं। तो वो जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप उसके अगले नेक्स्ट गोल जब टारगेट जब आप लाएंगे उसको अच्छे दाम में कैसे प्रिपेयर कर देते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से कंपलसरी सब्जेक्ट का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, जो आपके पेपर होते हैं कंपलसरी वो किस तरह होते हैं और उनकी डिवीजन सपोर्ट की क्या है, कौन कौन से पेपर होते हैं और उनमें सिलेबस क्या है, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी लंबी है तो उसमें अल्फाज छोटे हैं जो मतलब एंड तक लोगों को नजर ना आए, ये मैं सारा पढ़ के सुना देता हूँ। कंपलसरी सब्जेक्ट में छः सब्जेक्ट हैं 600 के, इसमें 200 की इंग्लिश होती है, 300 का आपका जनरल नॉलेज पेपर होता है उसकी डिवीजन पेपर बताता हूँ और 100 नंबर की इस्लामियात होती है, इस्लामिक स्टडीज। अब जो इंग्लिश होती है उसकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि 100 नंबर का आपको एक मजमून लिखने के लिए दिया जाता है, आर्टिकुलेशन इज टेस्टेड थ्रू एसए पेपर. आर्टिकुलेशन मीन की आप जो चीज प्रेजेंट करने जा रहे हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं कोई भी इंग्लिश के जुमला, उसके मुख्य सेगमेंट और पार्ट्स होते हैं, उसके टेंस, ग्रामर, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थॉट्स. ऐसे 100 नंबर का एक ही पेपर होता है 3 घंटे का, उसमें आपको 8 से 10 टॉपिक दिए जाते हैं और उस पर आपने उसमें से किसी एक पे 100 नंबर ऐसे ऐसे लिखना होता है जिसकी लेंथ तो हार्डली 25 से 35 से 40 पेपर होती है. और वो 3 घंटे में आप कंपोज करते हैं, उसमें मुफ्त चीज़ें आपकी चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर भी चेक कर लेते हैं, वो कैबरी भी जखीरा फादी से आप होते हैं वो भी चेक कर लेते हैं, आपके नज़रियात भी चेक करते हैं जो आपको मौजूद दिया गया है. बस आजकल पाकिस्तान में सबसे अहम इशू चल रहा है वो करप्शन है, तो करप्शन पर आपको ऐसे लिखने के लिए देंगे तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपसे डिमांड करेगा कि आपके पास नॉलेज क्या है उसके बारे में, आइडियाज़ क्या हैं. अगर आपको फर्ज किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, आप करप्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाएंगे और इसके मेन रीजन क्या है, उनको कैसे ओवरकम किया जाता है. इस पेपर में वो आपकी नॉलेज, इंग्लिश के साथ नो इंग्लिश प्रेजेंटेशन, आपकी क्रिएटिविटी, राइटिंग पावर और आपकी आइडियोलॉजी नजरिया अच्छे अंदाज में चेक करना चाहता है. इंग्लिश का कंपल्सरी का दूसरा पेपर होता है इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन, जिसे आप आम जवाब में इंग्लिश ग्रामर बोल देते हैं. उसमें 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश आप कितनी समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड मीन टू अंडरस्टैंड, आपकी कितनी काबिलियत है. कोई अगर आपको इंग्लिश का पेज दिया जाए, पैसे दिए जाए, तो आप उसको कितना अच्छी तरह समझ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सपेंशन या पैराग्राफ, कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे कि इस पर 300 वर्ड कैसे लें. थर्ड ग्रामर सेक्शन, जिसमें आप एफ एस सी पढ़ते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करप्शन, एडियम्स और वोकैबुलरी आइडियंस. एंड चौथा क्वेश्चन इसके प्रेसी, एक बड़ा पैसे ही देंगे कि आप उसको कितना अच्छा समझते हैं. आमतौर पर तलखीस उर्दू बोला जाता है अक्सर, दोस्त जो अभी जिन्हें जो नए नए एफ एस सी करके हमने याद होगा कि उर्दू में एक तलखीस का पैसे जाया करता था कि उसको पढ़ के हम थर्ड टर्म में इकट्ठा करते थे. तो बेसिक इंग्लिश जो पेपर है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, मल्टी डायमेंशनल चीज़ आपकी चेक करते हैं उसमें. और मुश्किल इतना नहीं है, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, निकोशी से सब कुछ आसान हो सकता है. अगर आप थोड़ी सिंसियरिटी के साथ जो बंदा करने जाएगा जो स्पीड में आएगा, एक बार उसे डिटेल उसको पता चलेगी, जस्ट एक ओवरव्यू हो जाए आपको पता चल जाए कि ये पैटर्न आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इस होते हैं जनरल नॉलेज, 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं 100 नंबर के. इंग्लिश 200 की होगी, ये भी हम कंपल्सरी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं. दोस्त बोल तो नहीं हो रहे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम महसूस करें तो बताना आपको बोल के ना हरकत मतलब नहीं. मैं बहुत सारे कुछ आपको सी एस एस के बारे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम पी एम एस जितने भी हैं आपको थोड़ा बहुत पता होती है कि आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अभी जस्ट इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें, ये सब्जेक्ट्स वगैरह रिलेटेड कल आपके क्वेश्चन जब आएंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी. नेक्स्ट इसके एवरीडे साइंस, ये 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें जनरल साइंस जनरल नॉलेज आपका बेसिक साइंस को चेक किया जाता है. इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस इज टेस्टेड. 100 नंबर का पेपर होता है, जितनी भी ये सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स के बारे में क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट्स को पेपर दिया जाता है कि चेक किया जाता है कि उसको कितना नॉलेज है थिंग्स के बारे में. जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठ से फाइनल ईयर के या थर्ड ईयर के वो इस चीज़ को थोड़ा बेटर समझ सकते हैं कि जो है ना. और ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट था सी एस एस जो लोग उनमें बैठे थे जिन्होंने बनाए हुए, बिकॉज इट्स वेरी मच गुड स्कूलिंग स्कोर और ये आपको बहुत ऊपर ले जाता है 100 नंबर जब एलोकेशन होती है सीट्स आपको मिलती है उसमें. नेक्स्ट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, हालात हाजरा. बी एन एस सी एल तंजीम और बी एन आई एस ओ के एक सरगर्म रुकन तमाम दोस्तों को हालात यात्रा से वाकिफ होना चाहिए और अगर हालात यात्रा से वाकिफ नहीं है तो दूसरों की क्या हम अपनी हालत भी तब्दील नहीं कर सकते, हम अपनी जो मसायल है उनको भी हल नहीं कर सकते। वक्त है लेकिन हमें पता हो कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, अपने घर से लेकर अपने मुल्क और अपनी दुनिया के हालात तक, सिर्फ उम्मत मुस्लिम नहीं हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। हालात आंद्रा में मुंतजर इमाम मेहदी जो हम नारे लगाते हैं और यकीन है भी सही दोस्त के इमाम का इंतजार कर रहे हैं, इमाम को सिपाही बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हालात तो वाकया से बाखबर रहना और उसमें हमारा क्या किरदार है उसके बारे में अपना जो किरदार बनता है उसको इफेक्टिव और अच्छे अंदाज में उस पर पूरा उतरना ये बहुत जरूरी है। और ये सी एस एस भी उन्होंने सौ नंबर में सब्जेक्ट रख दिया है, आई एस वालों के दौर लेना पैदा हो गया है जो लोग करते रहते हैं आराम अंदर से। तो ऐसे मुख्त चीज़ें थी आपके रीजनल इशूज पाकिस्तान इस्लामिक उम्मा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिसमें अमेरिका का रोल है, इंटरनेशनल बिग बॉस जितनी भी है वर्ल्ड बॉस है उनका रोल है, मिडल ईस्ट की तरह भी रेवोल्यूशन आया था उसके बाद में जो भी लेटेस्ट जब पेपर होगा उसमें लेटेस्ट इशूज होंगे उसके बारे में आपसे वो पूछना चाहता है कि आपके बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि फ्यूचर में आपको अफसर बनाने जा रहा है, आपको सफीर बनाएगा किसी दूसरे मुल्क में, आपको अगर हालात यात्रा का नहीं पता तो आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को या पाकिस्तान के मफादत को वहाँ पे अच्छे अंदाज में डिफेंड नहीं कर सकते। और ये दो लास्ट पेपर आए हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से जो 600 नंबर के हमने लाजमी मजामीन पढ़ने हैं, चार डिस्कस होंगे और आखिरी दो हैं ये हैं पाकिस्तान अफेयर्स जिसको हम आम जबान में पाक स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान बोलते हैं, यानी तहरीक पाकिस्तान के आगाज से लेकर पाकिस्तान के क़याम तक और 1947 से लेकर आई 2013 तक पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा मजहब, हमारा निज़ाम जिसमें रह रहे हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सब इसके बारे में पाकिस्तान के जो हालात वाकत हैं उसकी जोग्राफियाई नौत जोग्राफियाई अहमियत उसके बारे में आपको, यानी पाकिस्तान के बारे में आपको कितना कुछ करता है। नेक्स्ट इस्लामिया का पेपर है क्योंकि ये तमाम दोस्तों का आम अला हालात में और आम यूनिवर्सिटी कोर्सेज में पसंदीदा सब्जेक्टों का होना भी चाहिए, हम पहले दिन से मुसलमान ही पैदा शुदा ही मुसलमान बने नहीं हैं आज तक और ना ही कभी कोशिश की हमने बनने की। तो ये इसमें बेसिकली वो कैंडिडेट्स का नॉलेज बेसिक फेथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो निज़ाम है, निज़ाम कानून, निज़ाम सियासत, निज़ाम मईशत, निज़ाम मुआशरत, इसके बारे में एक तालिब इल्म को कितना नौहा हो या कितना नॉलेज रखता है या कितनी वाकफियत रखता है, प्लस कुरान और हदीस के बारे में भी इसमें इसे हम कुरान और हदीस इस्लाम क्या है उसके क्या रिसोर्सेज है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और ये इंग्लिश ऐसे के बाद सी एस एस का वायर सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान फेल होते हैं, यानी अगर मैं आपको बताऊँ रिजल्ट 2011 का 8000 बंदा फेल था जिसमें 5700 बंदा सिर्फ इस्लामिया में फेल था। तो पेपर क्यों तो थोड़ा आम हालात में नहीं पूछा, रोजे के ऊपर टॉपिक नहीं पूछा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है मेरे मुसलमान की असली से सोसाइटी को आप कैसे रिफॉर्म करेंगे, इस्लाम कैसे करेंगे, इस्लाम दुनिया का लीडर वर्ग यानी मजहब है तमाम मजहब का, आप मुसलमान की हैसियत से कैसे ये साबित दिफा कर सकते हैं कि इस्लाम वाकई जो है ना रहनुमा है, इस तरह करके इस्लामियात के बेसिक प्रिंसिपल और लिटरेचर से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन पे पेपर होता है, यानी कि उसका इस्तेमाल जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी शख्सियत में जो इस्लाम का हकीकी मनों में मकसद है, इस्लाम कुरान आइमा गाना ये सब चीज़ें सिर्फ हम तक एक वो खुशखबरी या खबर की हद तक महदूद नहीं होनी चाहिए जो हमने बदकिस्मती से कुछ वहाँ तक ही महदूद की है, यानी कि इनकी हमारी ज़िंदगी पर लागू करना सबसे अहम चीज़ है। और वही चीज़ इस पेपर में पूछता है कि इस्लाम को अगर हम अप्लाई करें पाकिस्तानी सोसाइटी में तो करप्शन कैसे खत्म होगी, सूद का निज़ाम कैसे खत्म होगा, फ्रॉड कैसे खत्म होगा, धोखाधड़ी कैसे खत्म होगी, अखलाकियात जो हमारी सोसाइटी पाई जाती है, हमारी सोसाइटी में औरत का क्या किरदार है, क्या वाकई उसे वही किरदार देते हैं जो इस्लाम ने दिया है, क्या निज़ाम विरासत या विरासत में जो औरत के हिसाब से देते हैं, क्या हम उसे तालीम के लिए भेजते हैं। तो इस तरह की जितनी भी डिस्कशन सोशल कल्चरल रिलीजियस और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ये चीज़ होती है। तो ये CSS का 50% जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मेनली कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जो हर कैंडिडेट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं एग्जाम में, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल कलेक्टर सर्विस हो, चाहे सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हो, इनके लिए जो भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए फॉर्म जमा करवाएगा, ये 6 सब्जेक्ट उसके लिए वाजिब है पेपर देना। अगर इनमें से किसी का भी नहीं देगा, एक पेपर भी छोड़ जाते हो, थोड़ी डिफिकल्टी भी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कौन सा ना लिया जाए, किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है, किस में नहीं मिलता, क्योंकि इन सब्जेक्ट रखने का एक तो मकसद होता है कि तालिबे इल्म को जो है ना पाकिस्तान के अलावा वाकयात या हमारी कल्चर तहजीब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नोवा हो, इल्म हो जाए। दूसरा जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ले ताकि अच्छे ग्रोथ में जा सके। मतलब पुलिस में जाना चाहता है उसे पूरे पाकिस्तान में पहली 15 या 20 पोजिशन में आना पड़ेगा, मैक्सिमम 30 में। अगर कोई बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसे टॉप 20 कैंडिडेट्स में पूरे पाकिस्तान में आना पड़ेगा। अगर कोई सफारत तारीख में जाना चाहता है, फॉरन सर्विस जिसे बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी की जबान में, सभी का तो उनको है, तो वो 40 तक उसको वैलिड करता है, कस्टम है, इनकम टैक्स है, उसकी डिटेल बाद में है, उसकी बात बात नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट कौन से और आपने कितना सपोर्ट दिया है। और जिस तरह हमारे FSC में या इंजीनियरिंग एग्जाम में 80 या 90% अच्छा सपोर्ट होता है, मैंने जो पोजिशन होल्डर में 90% होते हैं। CSS और PMS में जो बंदा 65% नंबर ले जाता है उसकी पोजिशन पहली पोजिशन कन्फर्म होती है, बिकॉज जितने भी पेपर होते हैं ये थोड़े ट्रेडिशनल से हट के होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी तहकीक, प्रेजेंटेशन, आपके आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल जैसा देते हैं चीज को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, एग्जामिनर को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं, आप वो कितने अच्छे और मुदल्लल अंदाज में उसे बताते हैं। तो ये कोई सब्जेक्ट की डिटेल है, ऑप्शन की आई थिंक 7 या 8 व्यूअर्स हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट्स वुड हैव टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 600 मार्क्स from this list, by not choosing subjects of more than 200 marks from any group mentioned in the list. In these 7 या 8 groups, इन 7 या 8 groups में से student ने 600 के subjects select करने हैं, और किसी भी subject के group में से 200 से ज़्यादा number का subject choose नहीं कर सकता। इनके हर group में से maximum 200 का कर सकता है, मिनिमम चाहे वो एक भी ना करें चाहे 100 नंबर लगा ले। तो पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ सब्जेक्ट्स का, फिर हर सब्जेक्ट प्रेजेंट पोस्टर जस्ट एक लाइन की ब्रीफिंग के वो किसके बारे में है, फिर आप आगे आते हैं। ये ग्रुप ही है जिसमें मोस्टली मैनेजमेंट साइंसेज और अकाउंटिंग के रिलेटेड है, जो लोग अकाउंट्स और मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बेहतर अंदाज में परसीव कर सकेंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है। ग्रुप बी है सोशल साइंसेज के बारे में, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड जर्नलिज्म, ये सेकंड ग्रुप है। ग्रुप थर्ड है बेसिक साइंसेज है जिसमें मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट हैं, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये प्योर यानी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको फेवर देने वाला सब्जेक्ट ग्रुप है ग्रुप सी। और हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट होते हैं जो 200 नंबर के सिलेक्ट कर सकते हैं, और 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर होते हैं, अगर आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे चूज करेंगे तो वो आपको 100 नंबर उसका पेपर देना पड़ेगा। ग्रुप डी बेसिक साइंस अगेन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, अर्थ साइंस जिसे बोलते हैं जर्मनी, ये बेसिक साइंस सब्जेक्ट है, ये तो सारे सब्जेक्ट 200 नंबर के हैं, और इनमें अगर कोई कैंडिडेट इस ग्रुप में से भी सिलेक्ट करेगा तो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा विदाउट दैट विल रिवॉर्ड हिम फॉर 200। नेक्स्ट है हिस्ट्री के तारीख के मजामीन है, जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री है, वैसे ही पाक और हिंदी तारीख, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ये तारीख के सब्जेक्ट हैं। इनमें से भी उसी तरह जो ऊपर वाले चार सब्जेक्ट हैं 200 नंबर के, हिस्ट्री ऑफ यूएसए 100 नंबर की पढ़ाई जाती है, और उसको पेपर 100 नंबर का, अगर यहाँ से भी कोई दोस्त सिलेक्ट करेगा या तो 100 नंबर करेगा या 200 नंबर करेगा। नेक्स्ट ग्रुप में लॉ के रिलेटेड जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप में से 200 नंबर के लिए आप कर सकते हैं, अगर अच्छे उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, क्योंकि लॉ का पेपर थोड़ा टेक्निकल आता है और सिर्फ LLB की बेस पे से आप नहीं करना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट जिस समय है जो जस्ट LLB किया हुआ है और वो इनको यानी ऑप्ट करके CSSG गो थ्रू कर जाएगा, हो सकता है वो पास यकीन कर जाएगा उसको सब्जेक्ट का, लेकिन उसको अच्छे से बोर नहीं मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस ही इज प्रिपेयर्ड वेल। इसमें जनरल लॉ का सब्जेक्ट 200 नंबर का, उसके बाद नीचे वाले चारों सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जुरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, और एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, जिसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आपस में ताल्लुकात, वर्ल्ड पावर्स के ताल्लुकात, मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात, उसके बारे में इसमें सारे सिलेबस होता है, उसमें कई रेट्स को डिस्कस करना है, उसमें क्या व्यूपॉइंट और ग्राउंड रियलिटीज क्या है, सब क्या क्या ताल्लुकात लोगों के चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप जी, फिलासफी एंड साइकोलॉजी। इस ग्रुप में दो ही सब्जेक्ट हैं, फलसफा जिसे बोलते हैं फिलासफी, साइकोलॉजी नफ्सियात इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट, ये दो लास्ट ग्रुप है जो लैंग्वेजेस के हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, एक रीजनल है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है। रीजनल लैंग्वेज जो हमारी अपनी पाकिस्तान की जबानें हैं, सिंधी है, पश्तो है, पंजाबी है, बलोची है, ये 100 नंबर की होती हैं और CSS के सबसे अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए, कोई भी कैंडिडेट अगर विलिंग है कि वो CSS एग्जाम देगा तो अगर वही से पूछेगा तो मैं ये कहूँगा कि इन सब्जेक्ट को मिस ना करें, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, चाहे पश्तो हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलोची हो, 30 नंबर इनके रखने के हैं, बाकी 70 नंबर आपको पेपर देना होता है, जब आप सब्जेक्ट रखेंगे तो 30 नंबर आपको मिल जाए। इस तरह यानी कि CSS के लोग ये कह रहे हैं 30 नंबर इनके रखने के, क्योंकि आपको हार्ड बहुत अच्छे स्कोर, थोड़ी मेहनत से अच्छे स्कोर दे जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस में इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक, ये भी अच्छे स्कोरिंग है, लेकिन सिर्फ अरेबिक और पर्शियन, बाकी जो दोनों सब्जेक्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग तो उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, बहुत अच्छा इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने पढ़ाया अच्छे अंदाज में, तो शायद वो अच्छा सब सुबह ले जाए, लेकिन हर बंदे के यानी उसके लिए चल गए जिसने इंग्लिश को टच नहीं किया, आम सब कहीं से एम इंग्लिश प्राइवेट किया है, तो मेरे ख्याल उसे ये सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए। पर शेर और रैपिड जो बंदा भी CSS करना चाहे मुझे ये एडवाइस करूँगा कि इन दो में से एक सब्जेक्ट जरूर ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ी सी मेहनत की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह ये पहले हमने कंपलसरी सब्जेक्ट डिस्कस किए, उसके बाद ये 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट डिस्कस किए, तहरीरी इम्तिहान जो हमारा 1200 नंबर का था वो इन्हीं में से होता है, 600 के कंपलसरी सब्जेक्ट, 100 के जो 6 पेपर बताए हैं जिसमें 200 इंग्लिश का, 300 जनरल नॉलेज के 3 पेपर, इस्लामिया, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, और 100 नंबर का करंट अफेयर्स जो ग्रांस नहीं होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 नंबर के इन 8 ग्रुप्स में से कैंडिडेट ने 600 नंबर के सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से भी कर सकता है, उससे हट के भी कर सकता है, मसलन अक्सर लोग पंजाबी रख लेते हैं, मैंने खुद रखी थी पंजाब में, हालांकि मैंने जिंदगी में पंजाबी कभी नहीं पढ़ी ना देखी है, पेपर में जाके पहली दफ़ा पंजाबी लिख रहा था, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा लोकल है, रीजनल है और पंजाबी के स्टूडेंट का मुझे पंजाबी में नंबर अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह अरबी है, पर्शियन है, हमें से कोई बंदा जितनी भी अरबी पढ़ ले अच्छा एक प्राइवेट का स्टूडेंट नहीं बन सकता, इतनी भी ज़्यादा मेहनत लगे, लेकिन बाकी भी इसमें अच्छा बन सकता है जो दूसरे लोग इम्तिहान में आ रहे हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मकसद आपका स्कोर ये करना है। हम CSS करते हैं कोई अच्छा ग्रुप ऑफ सर्विस लेने के लिए, ना कि हम CSS को एज ए प्रोफेशन कैरी ऑन कर लेते हैं, इनके IBU से ये सब इंजीनियरिंग को प्रोफेशन कैरी करेंगे तो जरिए बात है उसको स्कोर भी हो, चाहे कि केमिस्ट्री नॉलेज भी हो, कंसेप्ट भी हो, सब कुछ हो। या अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकल को इस तरह पढ़े कि हर चीज़ को अच्छी तरह जानता हो, समझता हो और उसको रिटेन करता हो, नॉलेज उसके बाद हो। लेकिन CSS में हमारा मकसद जो पेपर है एक तो हिस्ट्री हो होती है, साथ साथ हमारा मकसद है कि हम अच्छे से अच्छे नंबर लें। उसके लिए जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जाएँ उन्हें ये चीज़ ज़रूर जेहन में रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में नंबर लेने हैं, जितने ज़्यादा में नंबर मिलेंगे वो रिवार्ड मिलेगा। अगर मैं फर्ज की कोई दोस्त कहते हैं मैं फलसफा रख रहा हूँ तो वो जितना भी फलसफा पढ़ ले फिलासफर नहीं बन सकता, 200 के नंबर जो उसको सब्जेक्ट सिलेबस है उसमें वो फिलासफर नहीं बन सकता। हाँ थोड़ा बहुत उसे फलसफा का पता चल सकता है कि क्या है, लेकिन कभी PhD वाले पता जितना उसके पास नॉलेज नहीं होता, उसने फलसफा रखा है ये चूज किया सपोर्ट लेने के लिए। तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट लिए जाए जिसमें आपको कम मेहनत से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए। जो दोस्त भी यहाँ पे हैं यानी जब भी डिसीजन करेंगे इसके CSS के पास जाने का, चूज करने का या एग्जाम में अपेयर करने का, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके लिए मैंने एंड पे फार्मूला भी बताया आपके तजर्बा से, वो इंशाल्लाह अपनी स्लाइड से पहले जाएंगे तो दोस्तों को पढ़ के सुनाऊंगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और सब्जेक्ट सिलेक्शन जब आपकी होती है तो 50% CSS आपका हो जाता है। इनके एक सब्जेक्ट एवरेज में अच्छा स्कोर दे रहा है और दूसरा सब्जेक्ट उतनी ही मेहनत से आपको 30 नंबर कम दे जाता है या 20 नंबर कम दे जाता है। 20 नंबर कम का मतलब है कि आप 200 पोजीशन पीछे चले गए। इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत मोहतात रहना है, दोस्तों से डिस्कस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा स्कोर देने वाला है और जिस वक्त आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आधा CSS आपका हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट अच्छे नहीं करते जितनी मेहनत कर रहे हैं ठीक है आपको ग्रुप तो मिल जाएगा लेकिन उतनी मेहनत से शायद आप टॉप टेन पोजिशन क्या एलिजिबिलिटी कौन कौन सी CSS का एग्जाम दे सकता है या CSS के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट मस्ट बी इन बिटवीन 21 to 28 years of his age on closing date of submission of application. इनके जो तारे पे CSS एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र 21 और 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। कब मोस्टली एलिजिबिलिटी 31 दिसंबर को खत्म होती है, 31 दिसंबर इस साल के लिए फेल होगा, यानी 31 दिसंबर तक उसकी उम्र जब 21 और 28 के दरमियान नहीं होगी तो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ एक इसमें एक्सेप्शन है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम ही होते हैं ना जिनकी परमानेंट जॉब है और 2 साल का उनका एक्सपीरियंस है उनके लिए 2 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, जिस वजह ने गवर्नमेंट को परमानेंटली 2 साल सर्व की है और उसकी जॉब परमानेंट है तो कमीशन उसे 2 साल की एज रिलैक्सेशन देता है कि वो बंदा 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा एक और भी एक्सेप्शन है GB-14, जो लोग हमारे गिलगित बल्तिस्तान से दोस्त बैठे हैं यहाँ पे उनकी जो लिमिट है वो जनरल लिमिट 30 ईयर है और एज रिलैक्सेशन के साथ वो 33 ईयर है। सिमिलर इज केस विद बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की भी एज 30 है, जनरल जो पंजाब और सिंध के पी की 28 है, लेकिन बलोचिस्तान और GB-14 के लोगों के लिए 30 ईयर है और अगर वो अपनी एज रिलैक्सेशन क्लेम करें उस वक्त उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। दिस इज फॉर CSS एंड फॉर PMS यहाँ जो दूसरी कंपेटिटिव एग्जाम जितनी जॉब लगती हैं जनरल एज रिलैक्सेशन के 30 ईयर होती है और क्लेम करके 35 तक चली जाती है। जो तारे पे अप्लाई करना चाहता है उसकी ग्रेजुएशन हो और अपने एकेडमिक करियर में एक सेकंड लगने की जरूरत है। इनके बीए हो बीएससी हो 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और एक सेकंड लगने की जरूरत है। मैट्रिक एफएससी ग्रेजुएशन में किसी में भी एक सेकंड लगने की जरूरत है, बाकी दो डिग्री में उसकी फर्स्ट डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये जो सीट्स एलोकेट होती है वो किस तरह होती है, उसमें एक प्रोविंस वाइज कोटा होता है, 10% ओपन मेरिट सिस्टम होता है, बाकी कोटा होता है मुख्तलिफ सूबों का, जिसमें पंजाब प्लस इस नंबर 45%, सिंध 19%, इससे आगे परसेंट अर्बन और रूरल की भी डिवीजन होती है, 8% अर्बन होता है, 11% रूरल होता है, केपी के 13%, बलोचिस्तान 7%, जीपी फाटा 4%, आजाद कश्मीर 2%। ये जिस तरह सीट्स की डिवीजन होती है, कोटा सिस्टम है, मुख्तलिफ सूबों की होती है, पॉपुलेशन बेस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह बाकी रिकॉर्ड में जॉब में सीट्स की एलोकेशन होती है। ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, यदि सी एस एस पास करने के बाद जब आपकी एलोकेशन होती है, आपको सीट्स मिलती है, तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपकी जॉब्स होंगी। ये 12 ग्रुप्स में लिस्ट में हैं जितने आप प्रायोरिटी वाइज उन्हें भेजते हैं। मैं इनको जिस तरह मार्केट में लोग यानी प्रेफरेंस देते हैं उस लिस्ट से एंटर नहीं दूंगा। सबसे टॉप के लोग रहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज,
स्लाइड में नंबर 7 है,
इसे हम डीएमडी ग्रुप भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें सबसे अपनी पहली पोस्टेड असिस्टेंट कमिश्नर की होती है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, फिर कमिश्नर और फिर ऑनरोड सेक्रेटरी वगैरह 2021 ग्रेड में जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद होता है पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पुलिस ग्रुप जिसे बोला जाता है जवान में, जिसमें फर्स्ट पोस्टेड एएसपी की होती है, उसके बाद एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी और आईजी तक आगे जाते हैं। थर्ड ग्रुप है फॉरन सर्विसेज, पाकिस्तान के नुमाइंदे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉड वॉशिंग के अंदर काम करता है, 8th में कॉमरेंट ट्रेड ग्रुप है, 9th में मिलिट्री एंड लैंड कंट्रोलमेंट बोर्ड, जितना भी मिलिट्री की कैंट्स डेवलपमेंट होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कंट्रोल वो सारे इस ग्रुप के पास होता है। 10th में इसमें आता है आई थिंक सो ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी ग्रुप इसे बोलते हैं, जैसे पहली पोस्ट डिप्टी सेक्रेटरी की होती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान रेलवे, ये 12 डिपार्टमेंट है जिनमें आप इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं और आप सर्व कर सकते हैं। अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन टाइम कितना चाहिए, सबसे अहम चीज, और रेड में मैंने फार्मूला बनाया है, ये किसी किताब में नहीं है, इसमें आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन डिफर विद दिस, एक काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि 100% ठीक है। प्रिपरेशन टाइम किसी भी कैंडिडेट को अच्छी तैयारी करने के लिए 6 से 8 महीने कम से कम चाहिए। सेकंड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें प्रॉपर गाइडलाइन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी मजबूत इरादा हो, ये ना हो कि 2 महीने पढ़े फिर कहे अब 2 महीने काफ़ी है, 2 महीने घर चला जाए छुट्टी कर जाए, फिर 2 महीने पढ़े, इस तरह नहीं करना है, किसी ने 6 से 8 महीने की तैयारी काफ़ी है और उसमें प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है, उससे इनके उसको सीधे रस्ते पर लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें वो पढ़े, कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, कौन से टीचर के पास जाए, और डिटर्मिनेशन ऑफ स्टूडेंट कि वो कितना कमिटेड है काम करने के लिए। अगर तो जैसे उसने यही करना है कि मैं सीएसएस दे रहा हूँ दोस्तों को बताने के लिए, मैं सीएसएस दे रहा हूँ बस, फिर ये काफ़ी नहीं है, दैट शुड बी लास्ट क्लास, ऐसे समझे कि जिंदगी को उसका आखिरी काम है, बस 6 से 8 महीने लगा दें फिर इंशाल्लाह अफसर बन जाएगा। keep in mind that NCSS examination success is nothing but the combination of following mathematical expression. ये expression आपको बता देता हूँ. जो subject हमने discuss किया है, मेरी नजर में subject selection की weighting 35% आपको पे करती है end result में. अगर आप अच्छे subject select करेंगे तो अच्छी जगह जाएंगे. 50% आपकी मेहनत का role होता है, plus 15% 15% आपकी जो presentation paper attempt करते हैं, अपने ideas देते हैं किसी question में, उनका role होता है. मल्टीप्लाई बाई लाख. अगर खुदा पाक ना हो तो ये सारी चीजें आपकी जीरो हो सकती है, लेकिन इसमें जीरो हो जाएगा. इंसान का काम कोशिश करना है. तो हम कल जब वापस आ रहे थे फ्रांस से, तो किसी ने पूछा कि क्या आपके जाने से इंकलाब आ जाएगा, क्या आप लोगों को नहीं करवा रहे. इमाम ने जवाब दिया था कि मेरा काम नतायज बनाना नहीं है, मेरा काम खलूसियत नियत के साथ और खुदा को हाजिर जान के लोगों की फलाह के लिए और इस्लाम सर बुलंदी के लिए काम करना है. नतायज खुदा के हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है. और मैं यही कर रहा हूँ कि खुदा के साथ तमस्सो करते हुए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ तमस्सो करते हुए, खलूस नियत के साथ कोशिश कर रहा हूँ. और मुझे उम्मीद है कि यकीनन बेहतर होगा. और अगर ये इंसान रखेगा तो यकीनन कामयाबी इसकी गलत जो है नहीं. तो ये एक्सप्रेशन है मेरा नीचे में नहीं, बट इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट लक भी कुछ नहीं है, लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो कोटेशन हैं. मैन इज दी आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. इंसान ही अपनी किस्मत बनाता है. जैसे कुरान मजीद में भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ. इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है. ये किसी इंग्लिश लिटरेरी पर्सन की सेइंग है, आई थिंक उसने कुरान के उस वर्ष को ही जेब में रखते हुए ट्रांसलेट किया है. मैन इज दी आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है. एंड hard work never goes unrewarded. कभी भी सख्त मेहनत जो इंसान करता है उसका रिवार्ड उसे जरूर मिलता है. कभी ये नहीं होता कि इंसान मेहनत करे लेकिन कोई काम करे उसने उसे खुदा से लगा दे. क्योंकि खुदा आते हैं मुतलिक है, वो बंदों की मेहरबान है और किसी भी इंसान की मेहनत कभी खुदा जाया नहीं जाने देता. ये दो स्टेटमेंट्स प्लस ऊपर वाली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो भी लोग इस फील्ड में जाना चाहेगा ये तीन चीजें जहन में रखें और खुदा से और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन से तवज्जो करके और खुदा से जो जस्तजू करते रहे, दुआ करते रहे. दूर नहीं कि वो 6 माह के अंदर अच्छे अफसर और अच्छे काम करते. सबसे इम्पोर्टेंट वेस ऑफ दुपर का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सर्विसेज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. सीएसएस क्यों, ये क्यों हम पिछले घंटे से बोल रहे हैं मतलब सीएसएस करें, उसकी अहमियत क्या है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में. ये मेरे एनालिसिस में 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, लेकिन हजारों पॉइंट और भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं. टाइम की किल्लत की वजह से या जगह की कमी की वजह से ये 4 पॉइंट है कि जिनकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सीएसएस करें, क्या जरूरत है इसकी. नंबर 1 है की रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी पाकिस्तान की डोमेस्टिक दाखिला या खारजा पॉलिसी जो भी बननी होती है बनानी होती है, यही लोग जाके बनाते हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उनका है, पुलिस जो उनका है, फॉरन सबसे ज्यादा पाकिस्तान है, यही लोग होते हैं जो आपको आपके अपना जब रूल कर रहे होते हैं, वो लोग इन्हीं की पुलिस के विचार के कर रहे होते हैं. आपके सियासतदान जब उनके सामने काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई थिंक नहीं है. 2 महीने बाद आप मिनिस्टर तब्दील होता है, पीछे जो पॉलिसी होती है ब्यूरोक्रेसी जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, वो यही लोग होते हैं पीछे बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उनको अपनी उंगलियों में लगाते हैं. सेकेंड है नेचर ऑफ जॉब, जिसके लिए अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं, हम इंजीनियर बने डॉक्टर बने, इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी. अच्छी जॉब है, जॉब के अपॉइंटमेंट्स आपको घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सैलरी स्ट्रक्चर भी इनके अच्छे हैं. बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी जॉब के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर ही नहीं अच्छे हैं. थर्ड है पुलिस एंड डीएम की कंट्रोल मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस द होल सिनेरियो इन द कंट्री. पुलिस ग्रुप एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और सेक्रेटरी ग्रुप, ये 3 ग्रुप है जो पाकिस्तान में जितना भी सिनेरियो चल रहा होता है इनके पीछे पूरी गेम के पीछे इनका रोल होता है. इवन देन के आपको अक्सर हमारे जुलूसों का इशू होता है, कभी हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी के पीछे भाग रहे हैं. अगर किसी रीजन में हमारे डीपीओ बैठे तो हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. अगर इंसान का बच्चा होगा और सही मानों में ना भी नोबेल नोबेल भी होगा फिर भी कभी किसी जुलूस कोई जुलूस नहीं रुकेगा और किसी जुलूस के रुकने का कोई मसला नहीं होगा.
फोर्थ प्लेनेट
यू कैन प्ले अ पिवोटल रोल फॉर अपलिफ्ट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान. यानी आप शिया कम्युनिटी की अपलिफ्ट के लिए और जो अभी जंग चल रही है इनके शिया मोहम्मद वाले मोहम्मद के फॉलोअर्स की और उनके दुश्मनान की जैसे डिटोलों की हुसैनियों की उसकी सर्वाइवल या उसकी अपलिफ्ट के लिए इन पोस्ट मिला के आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट अदा कर सकते हैं बजाय कि दूसरी जगह पे दूसरी जगह भी आप अच्छे लोग प्ले कर सकते हैं. इंजीनियर के तौर पर फ्रांस के मिलत को सपोर्ट कर रहे हैं. डॉक्टर जब आप बनते हैं तो आप कौम को यानी मेडिकल के फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक बंदा कमिश्नर बैठा है डिप्टी कमिश्नर बैठा डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है एक डॉक्टर या एक इंजीनियर भी जिसमें मिलत के मसाइल में या मिलत की रहनुमाई के लिए जो उनके जो इश्यूज होते हैं उसकी सर्वाइवल या अपलिफ्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा हैं उनके कारण आप कर अभी जो पिछले इशू का आधार कम्युनिटी वाला आई जी के अपॉइंटमेंट इशू था अगर हमारे 10-15 सी एम होते डी आई जी लेवल पे आई जी लेवल पे होते हमें कोई परेशानी ना होती किस बंदे को अपॉइंट करते हैं. जब हमारा बंदा किसी की पोस्ट पे आके अपॉइंट हो जाएगा हमें हुक्मरानों के पीछे चलने की और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. ये चीज हमें मुस्तैकम भी करेगी और दुश्मनों के सामने उनका मुकाबला करने के लिए उनके सामने खड़े होने के लिए ये भी रोल प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट
दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन. अब जो जिन दोस्तों के कोई सवाल हैं वो दे दें अगर दोस्त बता रहे हैं बुकिंग काफ़ी हो गया प्रेजेंटेशन 45 मिनट मेरे क्या हो गया.
डीजी
हाँ सुनिए डीजी हम पंजाब में
मेरा सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि इस्लामिया के पेपर जो आपके व्यूज चेक करते हैं अक्सर मुसलमान तो क्या इसकी कोई शिया सुन्नी हवाले से बाइसिंग भी होती है पेपर में इसके.
नहीं आपने जो भी जवाब देना है उसमें शिया सुन्नी को डिस्कस ही नहीं करना. इस्लाम अगर उसने पूछा ना इस्लाम का निज़ाम मईशत इस्लाम का निज़ाम माशरत इस्लाम का निज़ाम अदल मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई ज्यादा डिफरेंस है शिया सुन्नी के इस्लाम का निज़ाम अदल में. हाँ आपका जवाब तो लेक्चर बहुत होती है आपका जवाब तो लेक्चर सुनते हैं किसी और तंजीमी दोस्त की अमरीका के खिलाफ सभी सुनते हैं और वहाँ को लेके आए जारी बात है अगर किसी की बंदी के पास पेपर चला के दो रगड़ देगा इनके न्यूट्रल मैन है जो इस्लाम का तफलकाबाजी से हट के इस्लाम में सिर्फ है शिया सुन्नी को पहले बोल जाए कुरान की तरफ जाए कुरान क्या कहता है जनरल ये जो कुरान का निज़ाम अदल के बारे में या निज़ाम सियासत के बारे में या निज़ाम मईशत के बारे में निज़ाम माशरत के बारे में जब वो व्यू पॉइंट आप लिखेंगे तो बहुत ही आला और अच्छा होगा. जिन दोस्तों बुक्स का सेकंड है दो दोस्तों पूछाई तो पर्सनली वहीं से बुक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन बुक्स और इस बात में आप नंबर ले लें दोस्तों फिर मैंने दूंगा नंबर जिस दो जो दोस्त बुक सेलेक्ट करना चाहिए सेकंड फेज में जाए तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ. इशू नहीं है
0300 9552574 फखर अब्बास नाम है नंबर. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 0300 9552574
इब्राहिम. CSS और PNS में पहला मेन डिफरेंस है कि CSS की जितनी भी सर्विसेज है वो आपकी फेडरल के अंडर आती हैं. PNS की सिर्फ प्रोविंस होती है पंजाब की रहता सिंध की रहता बलोचिस्तान की रहता दूसरों की रहता. दूसरा ये कि CSS में जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं PNS में सिर्फ लिमिटेड एक या दो ग्रुप होते हैं. तीसरा ये है कि जो प्रमोशन कैडर है CSS का बहुत ज़्यादा अच्छा है PNS की. चौथा जो पावर्स और कंट्रोल सिस्टम है वो CSS वालों के पास ज़्यादा है पाकिस्तान में ज़्यादा डोमिनेट CSS वाले करते हैं PMS वाले बहुत काम होते हैं. जिसको HEC ग्रेजुएशन एक्सेप्ट करती है वो ग्रेजुएशन है जो भी हो
अवार्ड मिले
हो सकती है आप देंगे प्रायोरिटी, जिसका मैंने 12 किलो बताया कि ना वो आप प्रेफरेंस देंगे, आप सबको सबसे टॉप की लिस्ट पर रखेंगे, जब आपको मेरिट आएगा तो आपको 0 किलो का टॉप दिया जाएगा। जैसा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है कि आप किसी कॉलेज के ऊपर अपने नेक्स्ट कॉलेज को, उसी तरह ग्रुप्स को भी इशू करें।
जो उसके लिए ईमेल आईडी बता रहे
हैं, ईमेल आईडी अब्बास ALMANI86@gmail.com
कौन सी है, तो इस तरह करके एक अमल का सवाल होता है।
और वैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं एग्जामिनर जो उसके नीचे क्या पूछ रहे जो उसके मुंह में आ गया वो पूछ रहे लेकिन होता यही है वो इस एरिया में रहते हैं वर्ल्ड सीनैरियो प्लस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस बच्चे सब्जेक्ट प्लस आपका फैमिली बैकग्राउंड प्लस आपकी एकेडमिक्स की आपने कौन सी डिग्री की
सवाल
पीसीएस दो है एक तो पीएमएस कर दी गई जो मैनेजमेंट सोचते हैं दूसरा पीसीएस होता है जो सब्जेक्ट बेस 100-100 नंबर के पेपर आते हैं मतलब जो ग्रेड 14 के नीचे की जितनी भी जॉब है ना पंजाब की सेंट्रल तो मुझे पता नहीं पंजाब को मैं आपको बता दें तो शायद वहाँ भी इसी तरह ही हो तो 100 नंबर ग्रेड 14 से नीचे जितनी भी जॉब है 16 से वो 100 नंबर का पेपर लेते हैं और उसमें वो मिक्सचर होता है 20 नंबर की इंग्लिश होती है 20 नंबर के पाकिस्तान अफेयर 20 नंबर की इस्लामिया 20 नंबर के करंट अफेयर्स और 20 नंबर के जनरल नॉलेज और इसके अलावा जो सब्जेक्ट के लिए बस मान लो कोई एग्रीकल्चर तो मतलब पीसीएस का पेपर देता है तो वो 100 नंबर का पूरा पेपर जो होगा वो उसकी सब्जेक्ट के रिलेटेड लेकिन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है मतलब पिछले दिनों ये थी 5800 की सीट थी बीएस 14 की उसमें किस तरह डिग्रियाँ थी इंग्लिश भी थी करंट अफेयर्स भी थे पाकिस्तान अफेयर्स भी इस्लामियात भी और जनरल नॉलेज थी
सर मेरा ये सवाल था कि आप जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है कि आपने जो नई इंटरव्यू भी मतलब आई थी क्लियर किए तो इस बारे में 300 मार्क्स आपने बताए इंटरव्यू में तो इस बारे में 300 मार्क्स में क्या क्राइटेरिया है क्या चीज़ जो मतलब इस बारे से है फोकस करते हैं क्या टेस्टिंग है क्यूरीज में वो कैंडिडेट इसमें
अगर एक तो है कि पर्सनैलिटी नो रूट मैटर करती है आपकी एग्जामिनर बैठा है वो उसको आप कितना अच्छा लगे हैं सबसे पहली चीज दूसरा आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स सीएसएस के लिए जिंदगी के हर शोबों में बहुत अहमियत की हामिल है और जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी कम्युनिकेशन स्किल्स आई मीन टू से कितना कॉन्फिडेंटली आप चीज पर प्रोपगेट कर रहे हैं जो चीज़ आपसे पूछते हैं बात बात होता है कि हमें जवाब आता होता है 100% ठीक आता है लेकिन जब हम उसको बताने लगते हैं हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका पर्सनैलिटी प्लस आपका नॉलेज और क्या कहते हैं कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं जिसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जो चीज़ आप प्रेजेंट करें कितने लॉजिकली उसको डिफेंड कर सकते हैं और किसी और से कोई प्रश्न
पीसीएस में इसकी कितनी लिमिट
जनरल जो सिर्फ पीसीएस में 16-17 की जनरल सीट्स होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरह पीएमएस है वो नहीं है उसके अलावा जनरल में कंटीजेंट है और ये रिलैक्सेशन एग्जाम 35 है पंजाब के लिए लेकिन बाकी सूबों को मेरे लिए सिंध भी ये बलूचिस्तान की थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे उसको बैकवर्ड की वजह से फायदा नहीं जाता है और जी बी फंड तक ही मिल जाता है थोड़ी
सर आप कैसे जाएंगे
पास होते थे बस सीट्स कुछ कम थी और बाकी खुदा में तो जनता है कैसे क्वालिफाई हो गया था मेरा अलहमदिल्ला 174th में बैठ रहा था और पाकिस्तान में लेकिन सीट्स कम थी सीट थी नेक्स्ट टाइम इन शाला खुदा में बन जाएगा अगर नंबर ऑफ सीट वेरी करती होगा 2008 में 450 सीट थी 2009 में 370 थी 2010 में 210 और 11 में 180 थी तो वो फ्लक्चुएट करती रहती है पहले 160 तक भी रही थी बीच में फिर 400 तक भी रही है वो हर साल उनको डिफरेंट ब्लैक थे जितने बंदे वैकेंसी क्रिएट होती है गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि जो लोग बैठे हैं वो कितनी सीट्स देना चाह रहे हैं तो उस पर डिपेंड होता है क्या आस पास होता है इसमें और कोई प्रश्न हर जो ग्रुप की 7 ग्रुप की बताया है उन्होंने हर ग्रुप में मैक्सिमम 200 नंबर ले सकते हैं मिनिमम आप 100 भी ले सकते हैं ना भी ले कोई इलाज नहीं है उन 8 ग्रुप्स में से आपने 600 नंबर के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं लेकिन कुछ ग्रुप में ऐसा कि अगर आप उस ग्रुप का सब्जेक्ट लेंगे तो दूसरे ग्रुप का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं वो जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें डिटेल दी हुई है उर्दू रख सकते हैं उर्दू के साथ पंजाबी भी रख सकते हैं दोनों लैंग्वेज ऐसी जो आपने पढ़ी हुई उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है पंजाबी हमने पढ़ी है पंजाबी उर्दू मिलते जुलते हैं तो दोनों इकट्ठे नहीं रख सकते उर्दू रखें पंजाबी साथ रखने कोई इशू नहीं है पंजाबी रखें उर्दू ना रखें उर्दू इस कंपेरेटिवली पंजाबी अच्छी नहीं लगती है उर्दू और फारसी में से फारसी की बहुत लिटरेरी पर्सनैलिटी है उनमें तो उदाहरण ले, लेकिन हमारे जैसा बंदा उर्दू को भी प्रेफर नहीं करेगा और उर्दू अच्छे से बहुत देखता नहीं है। उर्दू के लिए इस वक्त पर्शियन और अरेबिक बहुत अच्छे से बोलते रहेंगे आपको, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स कम होते हैं और जितने कम कैंडिडेट्स होंगे उसमें आपने जो आपका अपना पेपर होता है उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाने में थोड़ी मेहनत चाहिए और नंबर आपके कम आएंगे जब आपको थोड़े व्यूज डिफरेंट होंगे लोगों से, ठीक भी होंगे सिर्फ डिफरेंट होने के लिए नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़े डिफरेंट भी हो, क्रिएटिविटी भी हो उसमें, तकनीकी पावर या ताकत जिसे कहते हैं, और ठीक भी हो, लॉजिकली भी ठीक हो और रीजन भी उसमें ठीक हो, अकल फ्रेश हो। और बाद में ऑप्शनल के केसेस में छुट्टी भी आ जाती है, मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 5-6 दिन में 12 पेपर खत्म हो गए थे, इस तरह मैंने सब्जेक्ट थोड़े चेंज किए थे तो मुझे एक एक छुट्टी मिल गई थी ऑप्शनल में, लेकिन कंपल्सरी आपके हर हाल में 3 दिन में ही खत्म होंगे। एक पेपर सुबह 9 से 2 होगा, दूसरा 2 से 5, तीसरी सुबह इसी तरह, फिर तीसरी सुबह भी इसी तरह, से 28 साल की उम्र के दरमियान आप सिर्फ 3 चांसेस अवेल कर सकते हैं, जब हम 3 चांसेस में हो गए होंगे वरना 3 से ज्यादा चांस लॉ नहीं है।